ओम शांति। आज हम सबके बीच है आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी सिंगल। तो भाई जी का आप सभी ने तालियों से स्वागत किया है, दीदी ने भी किया फूलों से। भाई जी आपका आज बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भाई जी का आप सभी को संक्षिप्त में हम परिचय करा देना चाहेंगे। आप 1962 में ज्ञान में आए, 55 वर्ष से आप ज्ञान में चल रहे हैं। आपने साकार बाबा की पालना ली है, बहुत हमारे लिए भाग्य की बात है ये कि भाई जी ने साकार मम्मा बाबा की जो पालना ली है आज जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है। तो हम अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं, भाग्य है हमारा कि आज हम भाई जी से सुनेंगे। आपने लौकिक पढ़ाई इंजीनियरिंग पूरी की है और साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग जो विंग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। यज्ञ की अपनी एक कमेटी बनी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी के भी आप मेंबर हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग जो बॉडी है और साथ में ज्ञान सरोवर अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड के आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। 20 विंग के जो प्रोग्राम बनते हैं उसके आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग्स की एक न्यूज की मैगजीन निकलती है उसके आप एडिटर हैं। आपने यूएसए रशिया यूके आदि कंट्रीज में आपने सेवाएं की है और आप जहां जहां भी गए आपने अपने स्टेट्स जो है भारत में आसाम बिहार गुजरात उत्तराखंड पंजाब आदि आपने जो भी जॉब की है वहां पे ब्रह्मा बाबा की आज्ञा से ही आपने जॉब की है। तो वहां पर जहां जहां आपने जॉब की है वहां वहां बाबा के सेंटर खुलने के निमित्त बनी। और आज का जो भाई जी का टॉपिक है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी परमातीत अवस्था को कैसे प्राप्त किया। तो भाई जी ने अपनी आंखों से भाई जी ने ब्रह्मा बाबा की जो कर्मातीत अवस्था बनी है उसको प्रैक्टिकल इन आंखों से देखा है। और बाबा ने भाई जी के प्रति खास महावाक्य उच्चारे कि ये जो बच्चा है भाई जी है ये बहुत मीठा है और कभी किसी की निंदा नहीं करता है। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने भाई जी के प्रति ये महावाक्य उच्चारे, ऐसे भाई जी आज हमारे सम्मुख है। तो हम बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हैं। तो आज हम सभी भाई जी से सुनेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त किया। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिल करके उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सबने सुना है यज्ञ के शुरू में। जितने भी आदि रतन हैं वो सब मिलके ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ओम ध्वनि किया करते थे। पहले हम गहरी श्वास अंदर लेंगे और फिर उस श्वास को छोड़ते हुए ओम ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी श्वास गहरी लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। मुरली तो सबने सुबह सुनी ही होगी। मुरली में क्या मुख्य पॉइंट थी, क्या पॉइंट थी आज? दो बार ज्ञान स्नान करना है। वेरी गुड। और भी कुछ थी? हाँ, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत अच्छा। और वरदान में क्या था आज? हर ब्राह्मण की विशेषता को देखो कोई भी ब्राह्मण वक्ष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विशेषता ना हो, क्योंकि इतनी सारी बड़ी सृष्टि में भगवान ने उसे चुना है तो जरूर कोई ना कोई विशेषता को देखकर ही भगवान ने चुना होगा। तो भले हमें अपनी आंखों से ना दिखती हो लेकिन उसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी विशेषता है, इसलिए हर ब्राह्मण को समुचित रीति से सही नेत्रों से सही दृष्टिकोण से देखते हुए सम्मान देते हुए उसके साथ चलो, ये वरदान भी था। और खास एक बात और बाबा ने कही थी कि जगत जीत कौन बनते हैं, बोला था ना जो माया जीते मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत बोलते हैं ना, तो जगत जीत हम सबको भी बनना है। तो इसीलिए आज के जो कुछ अनुभव के साथ साथ जो कुछ बातें हैं जो शेयर करेंगे आपस में, तो केवल सुनने तक ही नहीं है बल्कि हम सबको भी जगत जीत बनना है। बाबा ने और इस बात में जगत जीत में एक और खास बात बोली जो आज ही हमें ऐसा लगा कि शायद हम आज पहली बार ही सुन रहे हैं। मुरली तो ये अनेक बार सुनी है, कौन सी बात थी वो, जगत जीत कौन बनते हैं, सतयुग में जितने आएंगे सभी जगत जीत होंगे नहीं, तो कौन बनेंगे हैं? बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे और प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। आज की मुरली में एक बात थी, इन बात पर भी आप वो सिमरण करते चलना देखते चलना। तो मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत कहते हैं। और जगत के अंदर क्या, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है जगत जीत बनना, कहते भी है ना कि भाई यहाँ पर क्यों आए हमारे विश्वविद्यालय में, क्या लक्ष्य है हमारा है मनुष्य से देवता, या कहे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद, ये प्राप्ति कराना। तो ये जगत जीत ही थे, विष्णु लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक थे, जगत जीत थे, इसलिए वैसा बनना। जगत में क्या क्या आ जाता है, इस जगत में ही रह रहे हम लोग, संसार में, संसार में क्या क्या चीज आ जाती है, सब कुछ आ जाता है ना, क्या क्या आती है संसार में चीजें, व्यक्ति वस्तु और देखो व्यक्ति तो सब आ ही जाते हैं, ये संसार में भौतिक वस्तुएं वगैरह भी आती हैं, लेकिन और क्या क्या आता है, ये प्रकृति भी आ जाती है, किसी ने बोला ठीक, पांच तत्व भी आ जाते हैं, और क्या आ जाता है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी जीव जंतु सभी कुछ आ जाता है जगत में, तो सभी होंगे सतयुग में भी जो अच्छे प्राणी होंगे, वो तो बाबा ने कहा ना वो सब तो अच्छे होंगे, जो सुंदर होंगे अहिंसक होंगे और सब रीति से वो भी अपने रीति से गुण संपन्न होंगे, तो इस कारण से वो भी आते हैं। तो ऐसे जगत जीत हम सबको बनना है और हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल थे। कोई भी रोल मॉडल होता है ना वो वैसा बनना सहज हो जाता है, जैसे आजकल के यंग जनरेशन, हमें भी याद है जब हम लोग भी यंग थे तो हमारे साथ भी कुछ पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में, तो एक दो भाई ऐसे थे बिल्कुल उस समय के जो प्रसिद्ध हीरो हीरोइन वगैरह थे वैसी नकल करते थे, वैसी एक्टिंग करते थे, क्योंकि उनके रोल मॉडल वो थे, तो उस रोल मॉडल के ऊपर पूरा ध्यान रहता है वो कैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कैसे चलते हैं, बोलते हैं, तो उस रीति से ही वैसा जो बनना चाहते हैं वो वैसा अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते वैसे बन जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा, देखो भगवान ने चुना भी ऐसा रथ, रोल मॉडल ऐसा सुना, बहुत चुना, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी लौकिक दुनिया के हिसाब से भी, लंबा कद, गोरा रंग, आंखें इतना निर्मल, आंखें एकदम लाइट से भरपूर आंखें, और प्रेम स्नेह भाव से भरा हुआ हृदय, नेत्र सब। बाबा से जब भी हम लोग मिलते थे कभी, तो बस सामने चित्र लगाया ना मधुबन में, देखा है कैसा चित्र है, कैसा है, ऐसा है ना, बस बाहें फैला के, और बस कितनी बार हम तो यहाँ पर जब आते थे ट्रेन से उतर के और इधर नीचे स्नान पानी आदि करके कई बार, या वैसे ही आते थे तो बाबा यहाँ टहलते हुए भी मिल जाते थे। कई बार मिले 62 से लेकर 69 तक, तो बहुत अनेक बार। तो बस बाबा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आंखें इतने प्यार से भरी हुई होती थी और ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी कि बस बाबा की बाहों में खींचते चले आते, चुंबक की तरह खींचते चले आते थे। तो ये तो एक फिजिकल देखने में आता था, लेकिन असली बात क्या थी कि जो बाबा के अंदर आध्यात्मिकता, पवित्रता भरी हुई थी, निश्चल प्रेम भरा हुआ था, वो आंखों से जैसे मैग्नेट का काम करता था। और इसीलिए उसका मैग्नेट की विशेषता ये होती है कि उसके संपर्क में जो भी लोहा आता है, जो चीज आती है, वो भी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है। ये मैग्नेट की विशेषता होती है, टेम्परेरी। तो इस रीति से जब हम लोग आते थे, बस बाबा की बाह में आए, और विशेषता ये होती थी कि हम लोग भी विदेही बन जाते थे, अशरीरी बन जाते थे। ज्ञान होता नहीं था कुछ भी उस समय, नया नया कोई है तो ज्ञान क्या होगा। अभी तक भी पूरा अशरीरी अगर हम बनना चाहें तो अपनी इच्छा से नहीं बन सकते, लेकिन बाबा में इतनी शक्ति थी कि टेम्परेरी भी बाबा उसका अनुभव करा देते थे, बस आया विदेही जैसे हो जाते थे, बस कुछ 25-30 सेकेंड, कुछ आधा मिनट, पौन मिनट बाबा के ऐसे बाह में रहे अशरीरी, फिर क्या करते थे बाबा, ऐसे थपथपाते सिर्फ, हाँ बच्चे आओ 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 मीठे बच्चे, ऐसा कह के बस, जो ऐसा बाबा की पर्सनैलिटी, और बच्चे बच्चे कह करके ना, बूढ़े से बूढ़ा भी होता था और बस वो भी बाबा के सम्मुख जैसे बच्चा जैसा बन जाता, और ये अनुभव करता था कि मैं जैसे विदेही। उसके बाद वो देह में जैसे आते थे, इच्छा नहीं भी होती थी, फिर बाबा कुछ टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, क्या नाम है आदि आदि, और फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, दूसरा भी यही अनुभव करता था, अशरीरीपन का अनुभव करता था। तो ये एक तो, और इसके पीछे क्या था कि बाबा ने खुद इतना अभ्यास किया हुआ था। आप सबने सुना ही है ना, बाबा ने कैसे डायरियां लिख के क्या क्या अभ्यास किया था, अपना भी, आत्मा का, परिवार वाले लौकिक उस समय जो और थे, जसोदा, निर्मल, शांता दादी, नारायण बेटा आदि आदि, सबको लिख लिख के, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, जिससे कि जब भी वो सामने आते थे ना, तो बाबा खुद भी आत्मिक भाव में होता था, उन्हें भी आत्मिक भाव में, तो देह का भान निकलता रहा, देह का संबंध निकलता रहा। भले देह का पत्नी थे जसोदा माता सब, लेकिन वो खुद भी, वो बाबा कहते थे, बाबा भी उसको, बच्ची आओ बच्ची, सब लोगों को वो देह का भान ही निकल गया था। और इस कारण से जो भी आता था वो ऐसा, तो एक तो हमें ये अभ्यास करना है कि बाबा ने जो कहा, क्योंकि बाबा रोल मॉडल है, बाबा के कदम पे कदम करके, तो ये तो सबने सुना है ऐसा होते थे। तो बस हर एक को भी, जिसको भी हम देखें, मिले, आत्मिक भाव से मिलेंगे तो वो आत्मा भी आत्मिक दृष्टि से हमें देखेगी। कोई उसके अंदर भी अगर कोई देह की भावना होगी, देह के संबंधों की बात होगी, तो वो जैसे खत्म हो जाएगी। अगर कोई देह का आकर्षण हमें दैहिक दृष्टि से देखता है, इसका मतलब हमारे में कमी है, उसकी कमी नहीं है, क्योंकि हमें वो देख रहा है। जरूर हमारे से ऐसे वाइब्रेशन उसके पास आ रहे हैं, इस कारण से वो इस दृष्टिकोण से देख रहा है, तो इसीलिए ये हमें देखना चाहिए। तो ये तो खैर मनुष्यों की बात हुई, लेकिन ब्यूटी तो यही है कि जो भी महान आत्माएं होती है ना, वो सब प्रकृति को वश में करते हैं। बाबा का देख रहा है, यहाँ हिस्ट्री हॉल है ना, देखा है ना, वहां ऐसे तीन संदली पड़े हुए हैं और एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पे मामा बैठते थे, इधर बीच की खाली रहती थी। और जब भी पार्टी आती थी, पार्टी वाले मिलके अनुभव वगैरह सुनाते थे, और गुरुवार को जब भोग लगता था तो बाबा जब मुरली चला लेते थे तो बस आगे, जैसे आजकल भी संदेशी होती है, भोग लगाती है, तो बाबा के सम्मुख भी जब वो आता था, भोग लगता था, और फिर संदेशी को बाबा बस हाँ बैठ जाती थी संदेशी, बाबा संदेशी को बोलते थे, हाँ बच्ची जाओ, गो सून कम सून, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, बस। अब बाबा जरा सी यूं दृष्टि दी, 5-10 सेकंड थोड़ा सा, और संदेशी एकदम उड़ जाती थी, जो भी बहन होती थी। और फिर उसके बाद भोग लगा के आते थे और संदेश वगैरह सुनाते थे। तो ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है, अभी भी होता है, लेकिन एक ब्यूटी खास जो देखी हमने, जब भोग लग जाता था तो भोग बाबा खोल के डब्बी में जो कुछ भी मीठा बना होता था, हलवा या जो भी भोग, वो बाबा थोड़ा सा लेके हथेली पर रखते थे, और बस बाबा ऐसा कहते थे, हाँ बच्ची आओ, बच्ची आओ। और कहीं से एक चिड़िया, हाँ छोटी सी बुलबुल होती थी, बस सुधकती आती थी, पहले टेबल पर बैठी, फिर बाबा के हाथ पर बैठी, और वो हाथ पर ही, देखो भले पक्षी है लेकिन कितना सौभाग्य की बात है, भगवान बुला रहा है और वो आए, और फिर वो चू चू करके थोड़ा सा खाती थी, और खाके फिर उसके बाद थोड़ा सा हॉल के अंदर चक्कर लगाया और फिर उड़ जाती थी। तो ऐसे ये देखो प्रकृति पक्षी, ऐसे ये वश में, बस बाबा जरा सा आह्वान करता था और वो अंत तक आती रही। और हमें याद है जब 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और 21 जनवरी को जब भोग लगाया, तो हम यहीं थे, तो बस उस दिन वो आई, हाँ, और बस देख देख के ऐसे बड़ा व्याकुल सी जैसे दिखती थी, और उसके बाद से फिर वो कभी दिखाई नहीं दी। तो देखो प्रेम के वशीभूत होकर तो जब ये पशु पक्षी जीव जंतु, चलो ये तो पक्षी ऐसा है जो प्रेमल पक्षी है, मतलब हानि रहित है, लेकिन एक बार की बात है, इधर आप सबने भी सुना होगा कि ये जो डिस्पेंसरी के आगे जमीन है, तो तब तो कच्ची थी, तो एक दिन यहाँ पर एक सांप निकल आया, तो बस सांप बड़ी तेजी से इधर उधर जा रहा था, तो पास में ही तो कुछ भाई लोग आए और बस डंडा लेके उसे पकड़ने लगे, पकड़ के जैसे मारने के लिए वो, तो बाबा बाई चांस किचन की साइड से उस साइड से आ रहे थे। बाबा ने कहा क्या है बच्चे, तो क्यों भीड़ लगाई, तो सबने बोला बाबा आप इधर नहीं आओ, इधर सांप है। और तो बाबा ने कहा अरे बच्चे क्यों, क्या कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ नुकसान कर रहा है क्या, कि नहीं नहीं बाबा, लेकिन सांप है, उसे मारने के लिए हम सब इकट्ठे, कि नहीं 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 बच्चे, बच्चे को नहीं मारो, बाबा का हर एक के लिए, कोई पशु पक्षी बच्चा बच्ची बस, यही भाव बाबा का सदा, क्यों बच्चे को मार रहे हो, क्यों तक वो कर रहे हो। तो एक भाई होते थे, हाँ जयपुर में रहते, बलदेव भाई कुमार थे, तो वो अभी तो शरीर छोड़ दिया, बहुत पुराने, तो वो वहां थे, आओ बच्चे इसे पकड़ो और मटके में बंद करके बाहर छोड़ के आओ। कैसे पकड़े, तो बाबा ने कहा रे बच्चे इसे ये पूंछ से पकड़ो, तो वो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि भाई थोड़ा सांप है तो वो कैसे पकड़ेगा। तो बाबा ने कहा अरे अरे बच्चे क्यों हिचके, चलो कोई बात नहीं बाबा पकड़ता है। बाबा आगे बढ़े तो सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं। और उस भाई ने बोला नहीं नहीं बाबा मैं आता हूँ। उसने बस पकड़ा, कुछ भी सांप ने नहीं कहा और बस पकड़ के मटके में डाला, ऊपर कपड़ा बांधा और उसके बाद छुड़वा दिया। तो जो भक्ति मार्ग में पढ़ा करते थे कि साधु संत आदि तपस्या करते थे उनके सामने हिंसक पशु भी आते थे, वो अहिंसक जैसे बन जाते थे। तो अपनी उनकी द्वापर युग से जब इतनी शक्ति थी तो ये तो इस तन में भगवान शिव बाबा सर्वशक्तिवान विराजमान, तो इस कारण से ऐसे ऐसे ये चीजें बहुत अक्सर यज्ञ वाले बताया करते थे। ये तो आंखों देखी जो बात है दो, ये तो मैंने वो बताई क्योंकि, लेकिन यज्ञ के शुरू में और किन्हीं स्थान पर जहां पर पहले यज्ञ ट्रांसफर हुआ बहुत सांप निकला करते थे, लेकिन कभी भी किसी ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई नुकसान। तो ये जो बात है कि ऐसे हमारा बाबा हम बच्चों को ऐसा बनाना चाहता है कि हमारे वाइब्रेशन जितने प्रेम के शांति के शक्ति के होंगे पशु पक्षी भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि समय थोड़ा है मैं तो बीच बीच में कोई वैसी दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं कि ये जो है ये ऐसी बात है जो जैसे आज का वरदान था, वरदान में था ना हर ब्राह्मण आत्माएं में कोई न कोई, तो मुझे याद आ गया बाबा की अव्यक्त मुरली। तो बाबा की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि अंत समय बच्चों को सामने दो पेपर विशेष आएंगे, दो पेपर का सामना हर बच्चे को करना पड़ेगा। तो कौन से दो पेपर? एक है ब्राह्मण परिवार का पेपर और दूसरा पेपर कौन सा? अपने शरीर का पेपर। एक है ब्राह्मण परिवार का पेपर, दूसरा शरीर का पेपर। तो उसी को ही बाबा ने जैसे आज के वरदान में भी बाबा ने कहा हर ब्राह्मण में, क्योंकि जब अंत समय में हम लोगों का संपर्क ज्यादातर अपने ब्राह्मण परिवार से है या ब्राह्मण परिवार के साथ साथ किसके साथ है? अपने शरीर से तो है ही है क्योंकि ये हमारा अंत तक का साथी है और ब्राह्मण परिवार हमारा साथी, बाकी दुनिया से तो लगभग संबंध संपर्क बहुत ही कम होता जाता है व्यवहारिक रीति से। और क्या होगा? और जितना अंत समय निकट आएगा उतना बाबा ने बताया है कि जो दुनिया वाले जो होंगे वो उनका क्या होगा और ब्राह्मण परिवार, इसीलिए बाबा ने कई बार बताया रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं या ये जो चीजें ये सब ब्राह्मण वत्सों के लिए ही बन रहे हैं। बाबा बना रहा है ब्राह्मण वत्सों के ही तन मन धन के सहयोग से, क्योंकि अंत में ब्राह्मण वत्सों को ही यहाँ पर आश्रय लेना है, ऐसा इलम हाउस बन रहे हैं, शरणागति भवन बन रहे हैं ये। तो अंत में जब ब्राह्मण परिवार के साथ भी रहेंगे और अभी भी जब ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में रोज तो आते हैं, मुरली के बाद मिलते हैं सारा संबंध संपर्क, तो क्या होता है अक्सर करके जब देखते हैं तो अरे ये ब्राह्मण ये बाबा का बच्चा इतना 25 साल पुराना 40 साल पुराना इसमें भी ये कमी है, तो चला लेते अपनी कमी को, चलो मेरे में भी अगर हुई तो कैसे हुई। तो इस कारण से बाबा ने कहा है कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण वत्स को देख करके हमारे मन में ये ना आए, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है और महाराजा महारानी भी बन रहे हैं, राजा रानी भी, प्रजा भी, साहूकार भी, जो बाबा ने बताया सब बन रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा यहाँ पर वैसा ही वो वहां पद पाएगा। तो इस कारण से अगर किसी का बहुत पुराना भी है और पुरुषार्थ कम है उसको साधारण पद पाना होगा, इसलिए उसका साधारण पुरुषार्थ चल रहा है। कोई बाद में आए हैं लेकिन लास्ट सो फास्ट की कैटेगरी में है, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, तो वो और तेज बहुतों से आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए एक तो ये नहीं आना चाहिए किसी भी ब्राह्मण वत्स को देख करके कि उसके पुरुषार्थ की बात, क्यों? क्योंकि उसे बाबा ने चुना है, भगवान ने चुना है इतनी आत्माओं में से, तो और भगवान का सिलेक्शन ना कभी गलत नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी है बाबा, कहने को तो हम बच्चे भी बाबा त्रिकालदर्शी बना रहा है, कह भी देता है बाबा बच्चे तुम त्रिकालदर्शी, लेकिन फिर भी जो बाबा है एक एक बच्चे का जानता है त्रिकाल, तभी तो भगवान ने चुना है उन्हें। तो इसीलिए जो यहाँ पर आ गया बाबा के घर तक, यानी मधुबन की बात नहीं है, चाहे सेंटर पे भी हो, भगवान के घर तक आ गया, जरूर उस आत्मा में इतनी 700 करोड़ आत्मा जो विश्व भर में है उन सब की तुलना में कोई ना कोई विशेषता जरूर ऐसी है, और इस कारण से वो आया है, तो कभी भी उसके प्रति हमारे मन में ये ना हो, तो ये कभी बात ना आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार के साथ ही हमें बहुत अनेक जन्मों तक सतयुग त्रेता में भले भिन्न भिन्न नाम रूप में होंगे लेकिन रहेंगे तो परिवार के साथ ही, तो इस कारण से एक उनके प्रति ये दृष्टि भाव हो। और क्या दृष्टि भाव हो? ये तो ब्राह्मण परिवार के साथ, तो पहला पेपर ब्राह्मण परिवार के बहुत बात आएगी, ये पुराना है, ये कमी है, इसमें ऐसा क्यों, क्या, कैसे, बहुत, क्योंकि ब्राह्मण परिवार ही साथ में रहना है। तो एक तो ये कभी भी अंदर प्रश्न हो, आत्मा है अपने पुरुषार्थ अनुसार ये है, तो उस किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी कमजोरी का भाव कभी भी ना आए। और दूसरा पेपर है ये शरीर का पेपर, तो इस कारण से शरीर का पेपर भी अंत तक, क्योंकि आत्मा का अंत तक का साथी तो ये शरीर ही है, ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, तो इसीलिए ये प्रकृति के 5 तत्व को भी ये देखते हुए ये जो शरीर है अंत तक इसका पेपर कैसे पार करे। पेपर तो बाबा ने कई बार बताया है, लेकिन बाबा ने ये भी बताया है उस पेपर को कैसे पास करना है, क्योंकि सारा दारोमदार हमारा किस बात पर है, अनेक जन्मों का पद का सारा दारोमदार किस बात पर है? हाँ? बाबा ने जो कहा है अंत मते सो गति के, अंत में जब हमारे श्वास जब प्राण इस तन से निकलेंगे उस समय हमारी स्थिति कैसी है उसके ऊपर सारा आधार है अंत मते सो गति। लौकिक में भी भाई आप में से जो भाई लोग हैं जिन्होंने जॉब किया है नौकरी की है तो जानते होंगे भाई गवर्नमेंट में हो या कहीं, तो एक होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट, जो कोई सैलरी मिलती है लास्ट डे पर जो सैलरी ड्राइव की है उसने जितनी तनख्वाह मिलती है उसके आधार पर ही सब कैलकुलेशन होता है, ग्रेजुएटी हो प्रोविडेंट फंड हो कोई भी जो है पेंशन वगैरह हो सब चीज उस आधार पर ही पूरा कैलकुलेशन वो जन्म भर मिलती रहती है। तो इस कारण से हमारा भी अंत में लास्ट ब्रीथ क्या है, तो उस समय जैसी याद अगर होगी व्यभिचारी याद जिसे बाबा कहते हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति वस्तु वैभव संबंध किसी में भी अगर रुक गई तो वैसा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए बाबा जो है वो बाबा का पुरुषार्थ इस पर ही विशेष था, तो मैं बाबा के ही पुरुषार्थ पर आता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से बहुत देखे। कई बार वैसे तो मिलना हुआ था बाबा से, इस रेफरेंस में मैं बता दूं बाबा का भाव यही रहता था, मेरा हर बच्चा जो है ना राजा बच्चा है, विश्व महाराजन है, ये दुनिया में सेलेक्टेड सोल है, इसीलिए साधारण पद का भागी कोई न बने, हर एक बच्चा राजा महाराजा महारानी बने। तो इस कारण से बाबा हर बच्चे को उस दृष्टि से ही देखता था, और बाबा वो उसके लिए बाबा हर बच्चे का क्या पुरुषार्थ चाहता था, कि जब से हम ज्ञान में आए हैं वो हमारा नया जन्म हो गया। भले शरीर वही है लेकिन आत्मा का जैसे नया जन्म हुआ, तो हम पुराने जन्म की बातें, नाम रूप वो सब भूल जाएं और ब्राह्मण जन्म की ही बातें याद रहे, नई दुनिया की बातें याद रहे। तो इसके लिए बाबा क्या करता था, शुरू में तो बाबा ने क्या किया, यज्ञ में हम सब ने सुना है ना, जो भी दादियां वगैरह है बाबा ने सबके नाम आदि बदल दिए थे। तो हमें भी ये सौभाग्य मिला 62 में, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे और बाबा कानपुर आए थे। लखनऊ से कानपुर 2 घंटे का रास्ता है, तो बाबा कुछ दिन रुके हुए थे कानपुर में, तो लखनऊ वालों ने प्लान बनाया कि हम सब बाबा से मिलने जाएंगे। तो एक दिन बस करी और सुबह निकलना तो जल्दी था 5 बजे, लेकिन तैयार होते निकलते सबको लेते हुए 7 तो वहीं बज गए लखनऊ में। उसके बाद बस निकले तो लेट पहुंचे, मुरली तो पूरी हो गई थी बाबा की, तो बस बाबा के पास सब जो लखनऊ वासी थे ज्ञान में वो सब 1 by 1 मिल रहे थे। हम तो बहुत यंग थे तब, 16 साल के थे, तो उस समय लास्ट के करीब हमारा नंबर आया। तो बाबा के पास गए तो बाबा ने देखा, दृष्टि देखी दी और बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हमने तो यही समझा सुबह जल्दी आना था, लेट हो गए, तो हमने कहा हाँ बाबा लेट हो गए, और बस लेट आई और हम सब लेट 2 घंटा 2.5 घंटा लेट हो गए। तो अच्छा लेट हो गए, तो बाबा ने बड़ी गुहिया, बाबा की तो हर बात में गुहिया था, लेकिन बाबा बहुत समय से तुम्हारा, दादियां वगैरह पास थे, गंगे दादी और कुमार का दादी सब बाबा के साथ चलते थे, तो उन्होंने बताया देखो बाबा का भाव ये है, ये स्थूल नहीं कि यहाँ बस लेट हो गई, बल्कि कलप पहले कि बाबा ने खुद ही बताया, देखो बच्चे कलप कलप के बिछड़े हैं, बच्चे होते हैं ना बाप से, तो बस बाप से बिछड़े हुए, बहुत समय के बिछड़े हुए बच्चे हो, आओ। और ऐसे ही बाबा ने हाथ फैला दिया और बाबा मिले, गोद दी बाबा ने, गोदी दी। स्थूल में तो पहले बाबा को जब बैठ के मिलते थे तो बाबा के पास हर बच्चे जाते थे, बाबा से मिलते थे, थपथपाते थे बाबा। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो हमने बताया हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, तो हमने बताया श्री, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे क्या सरनेम है, बताया सिंगल ऐसे करके। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ बाबा बड़ा जॉली स्वभाव के थे और वैसे भी, और विशेषता देखो जो विश्व महाराजन आत्माएं होती हैं ना, उनकी ब्यूटी यही है, उनकी विशेषता कि हर एक के साथ उनका व्यवहार ऐसा होता है कि उसको ये लगता है कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो ये ब्यूटी होती है, वो हर एक आत्मा को महानता का अनुभव कराते हैं कि आप साधारण नहीं हो। आजकल की लौकिक दुनिया में तो ये होता है कोई भी बड़ा होता है वो चेले को चेले की दृष्टि से देखेगा, उसको महानता का उतना अनुभव नहीं कराएगा, लेकिन बाबा में यही विशेषता थी, हर बच्चे को वो बाबा महानता का अनुभव। तो बाबा ने कहा जॉली, और दूसरी बात हर बच्चे को ये लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है नहीं, तो वो कैसे कब होता था, बच्चों के साथ बाबा बच्चा जैसा, युवानों के साथ बाबा युवान जैसा, जो अधेड़ होते थे उनके साथ अधेड़ जैसा, गांव की माताएं होती थी भोले वाली उनके साथ बाबा वैसा व्यवहार। तो हर एक को ये लगता था बाबा मेरा है। तो विश्व महाराजन की ये क्वालिटी है, हर एक को ये लगना चाहिए फलानी बहन फलाना भाई ये बहुत हमें दिल से स्नेह पवित्र स्नेह करते हैं, किसी को भी ऐसा ना लगे कि इनका मतलब ना ये भाई बहन ये तो फलाने को उनको ज्यादा स्नेह देते हैं, मेरे साथ इनका कम है। वो फिर छोटी छोटी स्टेट के जैसे मालिक बनेंगे, विश्व महाराजन जो होगा विश्व की हर आत्मा को ये अनुभव कराएगा कि जैसे वो हमारा है, तो उस रीति से। तो बाबा से पूछा जब, तो नाम बताया हमने। फिर बाबा ने कहा क्या बोला बच्चे, तो हमने बताया श्री जैसे। तो बाबा ने कहा देखो आओ आओ दादी, आओ गंगे दादी, आओ कुमार का, आओ देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है ऐसा। तो जो चिटचैट हंसी करने के बाबा से भी महान है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। भाव क्या था? बाबा ने पहले वातावरण उसको लाइट करके फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे अभी तो श्री बाबा ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे। श्री किन के नाम के आगे लगता है? देवताओं के, यानी कि उनके आगे जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो अभी तो किसी की ना आत्मा पवित्र है ना शरीर पवित्र है। शरीर विकारों से पैदा होता है और आत्मा भी 5000 वर्ष में 84 जन्म लेते लेते अब 63 जन्म से तो अपवित्र बनी हुई है विकारी। इसीलिए अभी तो कोई नहीं है। तो बाबा आज से तुम्हारा नाम ये मोहन करता है, मोहन देता है, और अब श्री जैसा बनना है। श्री माने आत्मा को भी पवित्र बनाना है और शरीर यह 5 तत्वों का बना है प्रकृति का, इस प्रकृति से बने शरीर को भी, प्रकृति के तत्वों को भी पावन बनाना है। तो इस तरीके से तब से बाबा ने जैसे नाम बदल दिया, जिससे पुरानी स्मृतियां जो है ना वो सब इस देह और देह के संबंध की वो भूल जाए, और हाँ हमारा नया जन्म हुआ, ये हमारा नया नाम है। तो इस रीति से, इसका ये मतलब नहीं सबको तो नाम बाबा दे नहीं सकता, लेकिन भाव यही है हर एक ये समझे कि मेरा ये नया जन्म है, और इस जन्म से शरीर से संबंधित जो पुराने संबंध हैं उन सब के बीच रहते हुए भी उनमें हमें लुप्त नहीं होना है, लिप्त नहीं होना है, और हमारा ये नया परिवार है, नया जन्म है, वो हमारी स्मृति रहे। एक बात ये होती है, तो उस ये बाबा की एक विशेषता विशेषती। और बाबा, मैं तो समय कम है तो मैं धीरे धीरे, बहुत बार बाबा से मिलना हुआ, हर बार नई नई बातें सीखने को मिलती थी। बाबा ये जो या तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, बड़ी पार्टी अगर होती थी, और बड़ी पार्टी का मतलब 15-20 होते थे तो वो बड़ी, बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी। शुरू में तो कम आते थे, और एक दो बच्चे ही अगर होते थे, बाबा अपने कमरे में मिलते थे। कमरा अभी तो देखने में इतना बड़ा है, पहले तो बहुत छोटा कमरा था बाबा का, जहाँ पर पलंग पड़ा है बाबा का और एक तरफ जो गद्दी पड़ी है बाबा की, बस उतना ही कमरा था, उसका भी थोड़ा और छोटा था, बाद में बड़ा किया है। बहुत ही छोटा, कुछ 8x8 का 8x10 का ऐसा ही कमरा था बाबा का, बहुत छोटा। तो उस कमरे में बाबा रहते थे। तो अभी तो ये बढ़ा दिया है, तो छोटे कुछ लोग होते थे तो 2-3 लोग वहां मिल लेते थे, और ज्यादा होते थे तो या झोपड़ी में बाबा मिलते थे, और भी ज्यादा अगर होते थे तो हिस्ट्री हॉल में। तो इस तरीके से बाबा मिलते थे। तो अंतिम दिन की बात मैं विशेष करना चाहूंगा, जिसमें बीच की भी कोई बात आ जाएंगी, कि कर्मातीत अवस्था के लिए वो हमने क्या देखा, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य कर्मातीत बनने का है। तो एक तो उस दिन हम तो इंजीनियरिंग पास करके, वो सब तो बहुत लंबा इतिहास है, कैसे बाबा ने खुद इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा, फिर कैसे ONGC में ज्वाइन करा, आसाम में हमारी पोस्टिंग हुई तो बाबा ने आसाम में भेज करके, तब आसाम में 67 में हम गए इंजीनियरिंग पास करने के बाद, और एक भी सेंटर नहीं था कलकत्ता के बाद, आसाम और उधर की तरफ त्रिपुरा, ऑल द 7 स्टेट्स में कहीं पर भी कोई सेंटर नहीं था। तो हमने तो बाबा से कहा बाबा हम तो वहां क्या करेंगे जाके, वहां तो कोई सेंटर नहीं है, कैसे हमें अपनी पालना क्या महसूसता होगी जब सेंटर ही नहीं है, कहां मुरली सुनेंगे। तो बाबा देखो हर बच्चे को किस नजर से देखता था, कि बच्चे वहां सेंटर नहीं है, इसीलिए तो बाबा ने तुम्हारी पोस्टिंग उधर करवाई है, इसीलिए तो तुम्हें वो ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा दूसरी और दो तीन ऑर्गेनाइजेशन में भी सिलेक्शन हुआ था, जो एक हैदराबाद में थे और एक दिल्ली में थे, तो हमने कहा बाबा दोनों जगह सेंटर है, हम वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये करो और तुम्हें वहां जाके सेंटर खोलना है, इसीलिए ये ज्वाइन करो। तो देखो बाबा हर बच्चे को, हम तो अपने को लायक नहीं समझते थे, सेंटर क्या होता है, कैसे खोला जाता है, कोई भी उसकी वो नहीं मालूम थी, लेकिन बाबा हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को महानता की दृष्टि से देखता था और फिर वो बच्चे महान बन जाते थे। तो उस रीति से फिर वहां पर गए और वहां पर वाकई ये बाबा की कमाल थी। बाबा हर हफ्ते पत्र लिख दिया करते थे, बाबा का पत्र तो बहुत ही ब्यूटीफुल, हाँ, लाल लाल अक्षरों में बाबा का पत्र होता था, सिंधी में बाबा पत्र लिखते थे और दो लाइनों के बीच में जो जगह होती थी उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन करके यीशु दादी वो भेजा करते थे, जिससे हम सब उस पत्र को पढ़ सकें। तो इस रीति से बाबा हर हफ्ते वहां पर लिखा, बच्चे अब ये करो, वहां पर जाके सेवा करो, मंदिर में सेवा करो। तो मंदिर में जाते थे और भगवान के मुख से निकले महावाक्य होते थे, तो जाते थे बस वहां पर लोग सुन के, और ब्यूटी ये होती थी कि ज्ञान सुनाते थे। और बाबा कई बार बोलता है ना कि जब बच्चा सुनाने वाले में इतनी शक्ति नहीं होती है और सुनने वाले अच्छे होता है, तो बाबा क्या करता है, उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा ज्ञान। तो ऐसा तो हमने बहुत बार अनुभव किया, क्योंकि उसका प्रमाण मिलता था अंदर, जैसे बस बाबा समझा रहा है और वो आत्माएं सुनते सुनते भी अधिकतर आत्माएं ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार में चले जाते थे। और नहीं चलो जिसे साक्षात्कार हो जाएगा अपने इष्ट देव का, लक्ष्मी नारायण का, और बहुत बस वो तो एकदम समझेगा कि मैंने तो जैसे भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार माने सब कुछ पा लिया, तो बस वो वहां के पक्के वो बन जाते थे। तो उस रीति से बाबा ने शुरू में बहुत सेवा करवाई वहां पर। तो एक तो ये अनुभव, क्योंकि जब बाबा को हम, बाबा जो भी बोलता है समझो बाबा मेरे लिए बोल रहा है। और कई बार हम आह्वान करते थे, प्रदर्शनी एक जगह थी इंग्लिश में पार्टी समझाने के लिए, फॉरेनर्स की पार्टी, उस टाइम की बात है 60s की, बहुत विदेशी तो कोई इंग्लिश में समझाने वाले कोई नहीं, लेकिन जहां पर प्रदर्शनी थी बड़ौदा में वहां पर कोई सेंटर नहीं था, 1965 की बात है। तो वहां एक भाई थे, बम्बई वालों ने आके वहां प्रदर्शनी लगाई थी बड़ौदा में, तो उन्होंने हमें कर दिया कि आप इन्हें समझाओ, सारे फॉरेनर्स थे, तो बस ये इंग्लिश में समझाएंगे। अब हमें तो इंग्लिश में समझाने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था, तब तो पढ़ाई करते थे। तो हमने कहा कि अच्छा वहां पर बाबा कहता है, बाबा अगर आप में विश्वास रखता है तो हम अपने में विश्वास क्यों ना रखें। तो बस हमने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ खड़े रहो, पहले चित्र के सामने खड़ा किया, हम अंदर गए और तब बाबा का आह्वान किया, बाबा आज बस आपको ही समझाना है, हमें तो इस बात का अभ्यास नहीं है। आप कहते हो कि जब ऐसा समय आता है समझने वाले बहुत अच्छे होते हैं, समझाने वाले उतना अनुभवी नहीं होता, तो मैं प्रवेश कर समझा, तो बाबा आपको समझाना है, ऐसा करके आह्वान किया। और उसके बाद आए तो बस पौना घंटे तक कैसे इंग्लिश में फ्लॉलेस एकदम इस रीति से समझाया बाबा ने कि हमें खुद आश्चर्य होता था कि इस बात का तो बिल्कुल अभ्यास नहीं है। तो देखो इस रीति से बाबा सेवा करता है। बाबा अभी भी कहता है, अव्यक्त मुरली में कहा ना बाबा ने कि बाबा तो बच्चों की मदद को तैयार है, लेकिन बच्चे बाबा की मदद नहीं लेते और भूल जाते हैं, और फिर हमें बाद में याद आता है कभी, तो ऐसा नहीं, बाबा तो हर पल बैठा हुआ है, बस हमें आवश्यकता है बाबा का आह्वान करने की। तो इस रीति से जब वहां पर आसाम में हम गए पहले, तो वो फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो वहां के बाद बाबा ने, जब बाबा ने भेजा था, हम कहते थे बाबा इतनी दूर जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, बाबा भेज रहा है, जब समय होगा तो बाबा तुम्हें बुला लेगा। देखो बाबा ने तो एक जनरल बात से कहा और हम भी यही समझे। तो जनवरी 1969 का महीना था और हम चूंकि देहरादून से गए थे उस साइड से, तो बाबा ने, वहां की बहन जी ने बोला हमारा म्यूजियम बन रहा है, आप आओ तो बनाओ, म्यूजियम बनाने में सहयोग दो, म्यूजियम के डायरेक्शन करो कि किस रीति से बनता है। अब म्यूजियम का नाम भी नहीं सुना था कभी, फिर भी वहां पर उधर गए तो बाबा को लिखा कि बाबा वहां जा रहे हैं। तो बाबा ने ही इंडिकेशन दिया कि बच्चे वहां जाओ लेकिन पहले मधुबन आओ और प्लेन से आओ। तो देखो बाबा ने ऐसा डायरेक्शन जैसे दिया, तो हम जनवरी 69 की बात है, तो हम वहां पर छुट्टी ली और छुट्टी लेके मधुबन पहुंच गए। लौकिक हमारे पिताजी भी हमें मिल गए रास्ते में और हम लोग दोनों 17 जनवरी की सुबह यहाँ पर आ गए, 1969 17 जनवरी। और उन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला और बहुत कई ऐसी नई बात, तो वो कुछ शेयर और करते हैं जिससे कि हम सबको भी आइडिया हो कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो कैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो हमेशा तो जब बाबा से मिलते थे, बाबा के पास जाते थे, हम कोई प्रश्न करते थे, अपनी स्थिति बताते थे, सेवा के प्लान बताते थे कई बात, और बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन इन अंतिम दो दिनों में हमने क्या देखा, जब भी बाबा के पास जाते थे बाबा के सम्मुख, तो बाबा ऐसे दृष्टि देते थे और दृष्टि देके बाबा थोड़ी देर में कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक भी शब्द बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा मन का हाल जान लेते थे। तो ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की, और ये स्थिति उसकी हो सकती है जिसने अपना मन जीता हुआ होगा तो वो दूसरे के मन का भी हाल तुरंत जान सकता है, दूसरे के मन में क्या। एक तो हमें भी कर्मातीत अवस्था के लिए ये करना है कि अपने मन के संकल्पों के ऊपर हमारी विजय होनी चाहिए, जैसे बाबा का देखा। और ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ, दो दिन में 17 और 18 जनवरी को 5-6 बार ऐसा हुआ। जब जब बाबा से मिलते थे बस दृष्टि देके बाबा प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी बताते थे। एक तो कर्मातीत अवस्था का ये लक्षण है, हम सब भी जितना जितना अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएंगे, इसका मतलब हम कर्मातीत अवस्था के निकट आते जा रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि अंत मते सो गते होती है, तो कोई भी काम हमारा पेंडिंग ना हो, रहा हुआ ना हो। क्योंकि कोई भी काम अगर हमारा रहा हुआ होगा ना, तो अंत में जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी तो रहा हुआ काम याद आता है, या कोई जिस आत्मा से कोई विशेष संबंध होता है वो आत्मा की याद आती है, या किसी के प्रति अति कटुता हो, घृणा भाव हो, वो आत्मा याद आएगी। तो ये अपने को अभी से चेक करना है कि हमारा किसी भी आत्मा से कोई प्रकार का लगाव झुकाव वो भी ना हो, ना कोई टकराव हो और कोई घृणा ईर्ष्या की भावना हो। क्योंकि जिसके प्रति ये निगेटिविटी भी हुई या टू मच लगाव झुकाव भी हुआ, वो आत्मा याद आएंगी तो अंत मते सो गति तो हो नहीं सकेगी, दुर्गति हो जाएगी। कोई भी शरीर देहधारी याद आया, दुर्गति हो जाएगी, फिर से नया जन्म लेकर के उस आत्मा से वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए उसके आसपास उसके संबंध में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है ये बहुत जरूरी है कि उस अंत शरीर छोड़ने से पहले हमारा ऐसा संबंध हो। तीसरी बात यह है, कोई भी काम रहा हुआ ना हो, क्योंकि यहाँ पर कई बार करके बहुत लोग आते हैं अपना, जब अपने संबंधियों का भोग लगाते हैं बीकेस का जो शरीर छोड़ के गए, तो वो आत्मा यही बताते थे, बस मैं सोचता रहा कि भाई मुझे अपना विल करना है, परिवार में सब तो चलते नहीं, तो ये विल करना है कि भाई मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये यज्ञ की इस चीज नाम ये हो जाए, कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई धन है। जो ज्ञान में होते हैं उनकी दिल होती है हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बने, लेकिन कई बार हम लोग टालते रहते हैं, हाँ कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और कोई ऐसा इवेंट बन जाता है कि शरीर छूट जाता है, कोई बीमार है, एक्सीडेंट है, कुछ भी, तो फिर वो आत्माएं बताती हैं, इतना रोती हैं, और फिर वो आत्मा बताती है मैं ये सोचता ही रह गया लेकिन ये मैं पूरा नहीं कर सका। इस कारण से वो कोई भी ऐसा ना करे, जो काम हमें करना है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पर वो कर ले, जो कि हमें जब प्राण हमारे तन से निकले तो वो चीज खींचे ना हमें अपनी तरफ, वो याद ना आए। तो इसीलिए तीसरी ये, और बाबा ने भी सारा काफी समेटता जा रहा था, पहले मामा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कारोबार दीदी और दादी को थोड़ा और सौंपा, और फिर जब और आगे समय आता जा रहा था तो बाबा धीरे धीरे अपने को सब तरफ से समेटता जा रहा था, और लास्ट डे भी दो दिन में भी तीन चार काम रह गए थे वो बाबा ने उस समय समेटे। क्या काम? एक तो बाबा नक्की लेक का म्यूजियम है ना, वो बिल्डिंग रही हुई थी, कई फिर दिनों से बात चल रही थी कि उस बिल्डिंग को ले लिया जाए, तो पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो बाबा ने 17-18 तारीख को ही उस पर साइन किया कि ये बिल्डिंग ले ली जाए। बाबा ने ईशु दादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, कोई बच्चा ये ना कहे कि बाबा तो चले गए और मेरे पत्र का जवाब नहीं आया। तो एक तीसरी बात मेन थी कि बाबा को आभास हो गया था कि हाँ आज मेरा ये अंतिम साकार इस शरीर में पार्ट है, और इसीलिए बाबा ने सारे काम जल्दी जल्दी उस दिन के निपटाए। तो हम लोग भी जब कर्मातीत बनेंगे तो पहले से अगर काफी काम निपटाए होंगे, अंत में दो एक रह गए तो निपटाना आसान होगा, अगर रह भी गए तो। इसीलिए कोई काम हमारे पेंडिंग ना रहे जो बाद में हमें ये हो कि ये मुझे शरीर छोड़ने से पहले कर लेना चाहिए था। तो बाबा ने उस दिन बोला यीशु दादी को, बच्ची आज जितने भी पत्रों के जवाब लिखवाना हो लिखवा लो, कोई भी पत्र रह ना जाए। तो सारे जवाब यीशु दादी ने लिखवा लिए, और फिर और रोज रात्रि क्लास होती है मधुबन में लगभग 8:30-9 के करीब, 9। लेकिन उस दिन बाबा ने सबको कहा, भाई को एक जमुना प्रसाद भाई जो यहाँ है, कि बच्चे आज सबको अनाउंस कर दो कि बाबा जल्दी क्लास कराएगा, 7 बजे तक सब भोजन करके क्लास में आ जाए। भोजन करके खास बाबा ने बोला, क्यों? क्योंकि बाबू को मालूम था, आभास हो गया था कि बस ये क्लास के बाद मैं तो इस शरीर से विदाई ले लूंगा ब्रह्मा बाबा को, और इस कारण से बाबा ने बोला, क्योंकि बाद में तो अगर भोजन होगा भी, बाद में खाने जाएंगे कोई खाएगा नहीं, क्योंकि बाबा को मालूम था कि ये शरीर छूटने वाला है। तो उस रीति से ये आभास हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था का यही लक्षण है, भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान। हम सभी आत्माओं को ये इच्छा मृत्यु, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे तब ब्यूटी है। अगर दुनिया की तरह ही अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी और उसमें हमने शरीर छोड़ा, क्या दुनिया में और हम में अंतर रहा? हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, हाँ बाबा अब मेरा यहाँ पार्ट पूरा हुआ, मैं आ रहा हूं। और वो तब होगा जब हम धीरे 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 सब तरफ से समेटा हुआ होगा, अंत में कोई काम याद नहीं आएगा। तो ऐसे ही बाबा ने मुरली जल्दी करके, अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है, बाबा आए और फिर कमरे में गए, और कमरे में जाके दादी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने देह त्याग किया। तो ये अपनी इच्छा से जैसे देह त्याग करना, ब्यूटी इसमें है। तो हम सबका भी यही लक्ष्य रहे कि बाबा हम सबको भी इस रीति से करना है और सारा जिससे कोई भी काम अधूरा बचा हुआ और वो न रह जाए। लेकिन ब्यूटी तो उसके बाद देखिए कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को अर्ली नाइट, और शरीर रखा रहा 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को संस्कार किया गया दोपहर के बाद 2 बजे के बाद। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं शरीर में, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, कोई केमिकल लोशन कुछ भी नहीं लगाया गया था, लेकिन वैसा ही चमकता हुआ शरीर, और शरीर में भी काफी हद तक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। पूरा तो नहीं कहेंगे, शरीर अकड़ जाता है जब आत्मा चली जाती है, लेकिन बाबा को जब हम लोगों ने स्नान कराया और यहाँ पर लाए शांति स्तंभ पर, तब तो ये यही संस्कार किया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता लगता था जैसे बाबा नींद कर रहा है। अब बाबा कहेगा आओ बच्चे, आओ हमेशा की तरह आओ मीठे बच्चे, बिल्कुल वैसा ही गोरा रंग, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, तो अगर हमने भी प्रकृति की सेवा की हुई होगी तो ये प्रकृति हमारा अंत तक साथ देगी, और प्रकृति के कारण हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी इच्छा से। शरीर भीष्म पिता का अभी है ना, और सारा शरीर चलनी हो गया, लेकिन उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इस कारण से उस वरदान के कारण ही वो जैसे कि बिल्कुल इतने जब तक उसकी इच्छा नहीं हुई उसने शरीर नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही हम सब भीष्म पिता में यानी ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और बाबा ने कहा है ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, अब क्या बनना है, पवित्र तो बन गए हम, और अब ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलते चलते हमें क्या बनना है, हैं? एक शब्द बाबा खास बोलते थे, अव्यक्त मुरलियों में बोला है, हाँ? तो अभी जो है हम लोगों को उस पद चिन्हों पर चल के बाबा के सब चीजों की हम पालना तो कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा, लेकिन अंत समय भी बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा, हम उस रीति से शरीर छोड़ के जाएं जिससे हमारी अंतमते सुगति हो जाएगी। छोड़ना तो है ही है, लेकिन हम अपनी इच्छा से छोड़े, और वो कब होगा, जब ये प्रकृति के जो 5 तत्व तो है ना, इनको हमने अपना सहयोगी बनाया होगा, मित्र बनाया होगा। ये पवित्र 5 तत्व तो है ना, तो ये 5 तत्व तो जो है इनको हमें अपना सहयोगी बनाना बड़ा आवश्यक है, जो बाबा ने भी बनाया। तो वो कैसे बनाएंगे कि रोज हम कम से कम 5-10 मिनट इन प्रकृति के तत्वों को भी योगदान करें। जल का आवाहन 5 तत्व है ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ टच करता हूँ। विषय है कि ज्ञान योग तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन इन तत्वों को पावन करने के लिए हमें एक एक तत्व से थोड़ी मित्रता करनी पड़ेगी, और मित्र मित्र की रक्षा करता है, मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता। तो जल तत्व है मानो, है? तो जल तत्व हमारे प्राण लेने का कारण न बने, मृत्यु का कारण न बने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल के जो संस्कार हैं वो हमें अपने अंदर धारण करने पड़े। तो और ये तो लंबा चौड़ा, लेकिन मैं केवल एक उसका गुण बताता हूँ। जल का कौन सा विशेष गुण है, शीतलता। और भी एक विशेष गुण है एडजस्टमेंट, हर चीज में जल एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो है गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसी हमारे अपने संस्कारों को इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। तो जल का ये विशेष गुण अगर हमने धारण कर लिया होगा, हम ये न कहें कि इसके साथ तो चलना आसान है, इसके साथ चलना मुश्किल है, नहीं। सबके फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्या होगा, जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, क्योंकि जल को मित्र बना लिया और मित्र मित्र की रक्षा करता है। ऐसी जल के और बाकी आपका होमवर्क है कि उसका आप सोचना, जल में और संस्कार शीतलता का है, आगे बढ़ने का संस्कार है, जल के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, जैसा बिल्कुल साफ होगा तो सब चीजें नीचे की दिखेंगी। ऐसी हमारा जीवन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शीतलता से भरपूर आदि आदि ऐसा। दूसरा तत्व है धरती। धरती का कौन सा विशेष गुण होता है पृथ्वी का? सहनशीलता, ये भी है, बहुत अच्छा गुण है। लेकिन उससे भी बड़ा धरती का गुण है दातापन का। धरती दाता है, धरती से ही हमें अनाज मिलता है, फल फूल जमीन से ही सब पैदा होते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब चीज एनर्जी सब कुछ धरती से मिलता है। तो ऐसे ही अगर हमने धरती का गुण दातापन का धारण किया होगा, हमारे सम्मुख जो आए वो खाली ना जाए। तो धरती के समान अगर हमने दातापन का गुण धारण किया होगा, कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, अनाज कपड़ा पैसा धन दौलत नहीं, इसमें तो पैसा है, हर एक की स्थिति अलग अलग है, लेकिन प्रेम सद्भावना सहिष्णुता सम्मान आदर भाव, जिस चीज में कोई पैसा भी खर्च नहीं होता कोई बात नहीं, हम अपना उसके साथ ये धरती का अगर हमने गुण धारण किया होगा तो क्या होगा, धरती को जैसे हमने पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया, और पृथ्वी फिर कभी जितना भी अर्थक्वेक आएगा, जितने भूचाल आएंगे धरती हिलेगी, बहुत जगह ऐसा हुआ धरती फिर मृत्यु का कारण नहीं बनी। बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, बस आवश्यकता ये है बच्चे जो है ना अपना क्लीन और क्लियर बुद्धि योग अगर होगा, बाबा समय पर टच करेगा, बंधा हुआ है बाबा, लेकिन बच्चे अगर उसे रिसीव ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। और बाबा ने कहा जो बच्चे रिसीव कर लेंगे ऑटोमेटिकली उनके पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता, बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन बच्चों को अपना बुद्धि हो क्लियर, तो वो ये तत्व जो है कोई भी हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकता अगर हमने तत्व का एक मेन संस्कार धारण किया हुआ होगा। तो ये धरती का गुण है। ऐसी वायु का कौन सा बड़ा गुण है? हल्कापन का। अभी थोड़े दिन दो दिन पहले ही कई हिस्सों में भारत में ही आगरा साइड में यूपी और राजस्थान, यहाँ तो आप लोग न्यूज़पेपर या उतना नहीं मिलता होगा, न्यूज आई थी कि बहुत 125-150 लोग मर गए, इतनी तेज हवा का बवंडर चला कि अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। ये तो एक रिहर्सल है। बाबा ने बताया अंत समय पांचों तत्व एट ए टाइम अपना जब अटैक करेंगे तो ये तो वायु से बचने का क्या साधन है कि चारों तरफ जितना भी हो, दो दिन पहले भी बाबा का आया था ना तत्व, तो यहाँ पास तक आएगा लेकिन आपके पास वो सूली से कांटा हो जाएगा, आपके पास वो नुकसान नहीं होगा, बाहर बहुत बहुत नुकसान होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि हमने अगर प्रकृति की सेवा की होगी, प्रकृति के साथ अपने संस्कारों को मैच किया होगा, और ब्रह्मा बाबा यही तो करते थे, बच्चों को ले जाते थे और पहाड़ पर घूम के बैठाते थे, बाबा बच्चे योग करो, भले इन शब्दों में नहीं होता था प्रकृति को योगदान करो, लेकिन तब यही होता था कि प्रकृति की गोद में ओपन में बैठ के भाव यही होता था कि प्रकृति को हम अपने शुद्ध वाइब्रेशन दें, उसे मित्र बनाए। तो वायु का मुख्य गुण है हल्कापन, हर चीज को ऊंचा उड़ाती है। तो ऐसे ही हम जीवन में सदा हल्के रहे, कोई भी परिस्थिति आए वो हमें भारी न बना दे, और जितना हम हल्के रहेंगे तो वायु के जितने प्रकोप होंगे, जितने अटैक होंगे, कोई बहुत तेज साइक्लोन भी आएगा लेकिन वो हमारे नुकसान का मृत्यु का अशांति का कारण नहीं बन सकता। ऐसी चौथा तत्व कौन है? आकाश। आकाश तत्व की क्या विशेषता है? विशालता। हाँ। ऐसे ही बाबा कहता है इतने विशाल हृदय बनो, कितने विशाल हृदय कि हर व्यक्ति को हम क्षमा कर सके। जो भी महान आत्माएं होके गई हैं, वो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से लेकर चाहे धर्म पिता हो, जो भी महान आता है उनमें सबसे बड़े से बड़ा गुण था क्षमा का। तो इसीलिए हमें ये गुण अपने में अंदर देखें, किसी के प्रति दूसरे ने जितनी भी हमारे से नेगेटिविटी की हो, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना ना हो। और ये नहीं होगा इसका मतलब हमने क्षमा कर दिया, और जब क्षमा कर देते हैं तो फिर वो व्यक्ति याद नहीं आएगा, इसने ये नेगेटिव किया, मैं इसके साथ ये करूं, ऐसी बात कुछ नहीं होगा और वो व्यक्ति दिमाग से निकल जाएगा। और अंत में जब हमारे प्राण निकलेंगे तो ये ही चीज बहुत बहुत मदद करेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि निगेटिव जो हमारे साथ, हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन कईयों का संस्कार होता है वो आपका खराबी करेंगे, निगेटिव करेंगे, आपकी प्रोग्रेस में बाधा पहुंचाएंगे, रुकावट डालेंगे। तो लेकिन ब्यूटी तो यही है, ऐसी आत्माओं को भी हम क्षमा करें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर सकेगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर सकेगा। इसीलिए हम सब तो महावीर हैं, बाबा ने बोला, तो इसीलिए कायर तो है नहीं। तो किसी की भी कोई नेगेटिविटी, कोई बात बुद्धि में ना रहे, तो क्या होगा, हम सदा हल्के रहेंगे और हल्का व्यक्ति तो ऊपर ही उड़ता है, आत्मा उड़ के समय पर चली जाएगी, कोई भी साइक्लोन उसका नुकसान नहीं कर सकता। और पांचवा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि देवता किस रीति से है प्रकृति में, सूर्य के रूप में, सूर्य है ना, तो सूर्य के रूप में वो अग्नि देवता। और अग्नि का मतलब क्या है, अग्नि में कोई चीज डाल दो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आपका अंत समय ऐसा अग्नि का स्वरूप हो, ज्वालामुखी रूप हो, जो बाबा ने कहा है कि लोगों का स्वरूप बदल जाए। अंत में आएंगी आत्माएं, रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख, आए आपका रूप देख के उसका रूप बदल जाए, और रोती हुई आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी अशांत आत्मा, कोई भी निगेटिव ऐसा से भरपूर आए उसका रूप बदलने की। अंत में मुंह से ज्ञान सुनाने की क्षमता नहीं होगी, समय नहीं होगा, लेकिन बस आए हमारा रूप देख करके उसका अग्नि के में डालते हैं ना, रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमारा ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप हो, उसका स्वरूप बदलने की क्षमता हमारे अंदर हो। तो ये पांच तत्वों की सेवा बहुत बड़ी सेवा, ब्रह्मा बाबा ने ये सेवा बहुत की। इसीलिए बाबा एकांत में 2 बजे उठ जाया करते थे, और उस समय यज्ञ का कोई कारोबार नहीं, और 3:30 के बाद तो सभी उठ जाते थे, तो एकांत में बैठ के बाबा विश्व की समस्त आत्माओं को योगदान करते थे, और टहलते हुए यहाँ पर आंगन में प्रकृति के 5 तत्वों की सेवा करते। तो हमें भी ये देखना है कि ज्ञान योग धारणा सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का कोई तत्व रह ना जाए। तो तभी तो बाबा कहने के, देखो ये प्रकृति ने अंत तक साथ दिया। और आपने सुना होगा बाबा से जब पूछा, जब बाबा शरीर छोड़ दिया तो बाबा आपको कैसा अनुभव हो रहा था अंत में, जब तो बाबा ने बताया, मुरली में भी आया था ना, कि एक तरफ कर्म भोग उनका युद्ध, एक तरफ योग बल, दोनों की युद्ध चल रही थी। कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था, शरीर में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, और दूसरी तरफ ये तो भोग बल हो गया, जो शरीर की जो भी हिसाब किताब है वो एक तरफ, दूसरी तरफ योग बल यानी कि जो बाबा की याद वो खींच रही थी। तो शुरू में ये भोग बल ये ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत दर्द था, लेकिन धीरे धीरे ये कमजोर होता चला गया, योग बल बढ़ता चला गया, और अंत में योग बल ने भोग बल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और इसके बाद आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल के चली आई। तो अंत में ब्यूटी तभी है जबकि हम भी ब्रह्म बाबा की तरह ये शरीर छोड़ के कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके चले। और इसके लिए क्या होगा कि सो स्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर हो। परिस्थितियां तो आएंगी, बहुत आएंगी। बाबा के सामने कौन सी परिस्थिति विशेष आती थी? खांसी रूपी परिस्थिति। कई बार बाबा ने मुरली में बोला है ना, खांसी भी आती थी, हम लोगों को लगता था बाबा की आंखों में पानी भी आ जाता था खांसते खांसते, हमें लगता था अरे कितना कष्ट बाबा को हो रहा है जब मुरली सुनते थे। लेकिन बस थोड़ा खांसी आई, बाबा के पास में हिस्ट्री हॉल में अभी भी रखा होगा शायद लक्ष्मी नारायण का चित्र या कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र होता था, बस बाबा कहता देखो बच्चे अभी तो ये पुराने तत्वों का बना हुआ शरीर है, तमो प्रधान तत्व है, कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, नया सतो प्रधान तत्व होंगे, नई दुनिया होगी और कोई भी एक परेशान करने वाली खांसी कोई भी चीज नहीं होगी। तो बस कल बच्चों को भी खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए, है ना। कई बार बाबा करके बताते थे, बस इतनी खुशी हो मैं जाके कल ये ऐसा बनूंगा लक्ष्मी नारायण। वो कई एक्ट बाबा करते थे, कभी कभी बाबा कहते थे देखो बाबा गया हुआ है भक्ति मार्ग में कई जगह, तो भक्त क्या करते हैं भगवान के आगे शंकर के आगे खास करके कहते हैं भरदे झोली भरदे, ऐसे कुर्ता इलाके बाबा कहते थे भरदे झोली भरती, भक्ति मार्ग की कई चीजें बाबा सुनाते थे, बाबा ने ये ऐसा देखा हुआ है सब। और बच्चे ये अब शंकर तो झोली भरेगा थोड़ी, वो तो झोली खाली करने वाला है, विनाश होता है ना, और कहते हैं ना हम शंकर की प्रेरणा से, वो तो सबकी झोली खाली कर देता है पूरी दुनिया की, तो इसीलिए वो भरने भरने वाला तो एक शिव बाबा है हर चीज में। बाबा कहता था ये जो वो बनता है ये अमरनाथ का शिवलिंग, तो बाबा ने उनसे पूछा मंदिर के पुजारियों से, तो बस अंदर की बात भी बाबा कोई भक्ति मार्ग के लिए अनादर नहीं है, लेकिन क्या क्या लोग करते हैं वो सब बाबा ते बाबा सुनाया करते थे। तो मेन बात यह है कि प्रकृति के इन तत्वों पर ना बस ये करते रहेंगे तो अंत समय में हम सब भी जो माया जीत मन जीते माया जीत जगत जीत बनेंगे, और जगत में तो प्रकृति भी आती है, तो ये बहुत जरूरी है आप यहाँ पर हो जब तक कल तक, तो बस कहीं पर भी हो प्रतिदिन प्रकृति को एक तो ये योगदान करें 5 मिनट भी, और दूसरी बात प्रकृति के एक एक तत्व से आप अपनी डायरी में लिखना उस तत्व में और क्या गुण है, अग्नि में क्या है, आकाश में और क्या गुण है, और उन गुणों को अपने अंदर कैसे हम धारण करें। तो बस जितना जितना धारण करते चलेंगे उतना उतना हम भी प्रकृति जीत माया जीत और मन जीत बनते जाएंगे, और बाबा की तरह ही बस कर्मातीत बन के अंत में चलेंगे। साथ साथ बाबा का वायदा है ना, अभी तो बाबा ठहरा हुआ है साथ साथ जा रहा है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी भाई जी का अनुभव सुनते सुनते दिल गा रहा था, एक बाबा मिले मधुबन में और शिव बाबा मिले उनके तन में, तो भाई जी के अनुभव सुनते ही हमें महसूस हो रहा है कि पहले कमी लग रही थी कि हमें बाबा को बाप दादा को नहीं देखा बाबा को नहीं देखा साकार में, पर अभी बाबा ने भाई जी ने हमें यह महसूस कराया कि अभी हमने इन आंखों से बाबा को देख लिया, इसलिए भाई जी हमारे बीच में आए, हम बहुत भाग्यवान हैं, उन्होंने खास समय दिया और बाबा के अंग संग के अनुभव हमें सुनाए कि बाबा कैसे कर्म करते करते कर्मातीत बने और प्रकृति जीत भी बने। और भाई जी के लिए हमारे दिल में एक ही बोल है कि आप दिव्य गुणों का गुलदस्ता हो, रूहानी है आपकी मुस्कान, रूहानी है आपकी मुस्कान, खुशबू फैलती है आदरणीय भाई जी आपसे, ज्ञान गुण और शक्तियों की आकर्षित है भगवान, आकर्षित है भगवान। तो भाई जी का बहुत अभिनंदन है, तालियों के साथ आभार और धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति।